بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرہ زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 102 سے 104 تک کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، ایشور سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور مسلم رہتے ہوئے ہی مرنا، اور تم سب مل کر ایشور کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور بکھرو نہیں، اور اپنے اوپر ایشور کی اس وبھوتی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے شترو تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پریم جگایا، تو تم اس کی وبھوتی کی چھایا میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جیسا کہ تم نرک کی کگار پر تھے اور ایشور نے تمہیں اس سے مکتی دلائی۔ ایشور اپنی نشانیوں کو اس پرکار تمہارے لیے اسپشٹ روپ سے ورنت کرتا ہے کہ شاید تم لوگ مارگ درشت ہو جاؤ، اور تم مسلمانوں کے بیچ ایک ایسا گٹ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا نمنترن دے، اچھے کاریوں کی اور آمنترت کرے اور برائیوں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ سفلتا پراپت کرنے والے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤں، ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج شکروار ہے، دہی کی 24، جمادی ثانی کی 11 اور جنوری کی 14 تاریخ۔ اس سبھا میں پرسارت ہونے والے کاریکرم اس پرکار ہیں۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے وشو سماچار، اس کے بعد راجنیتک چرچا، اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے پتر سنسار، اور انتیم کاریکرم ہوگا وگیان کی ڈگر۔ تازہ اور وستت خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتا ہے parstoday.com/hi۔ اب آپ سید میسم سے وشو سماچار سنیے۔ سب سے پہلے آج کے مکھیا سماچاروں کا سارانش۔ ایران کے ودیش منتری نے اپنے چینی سمکش سے بیجنگ میں ملاقات کی ہے۔ بلنکن کا کہنا ہے کہ پرمانو سمجھوتے سے امریکہ کو باہر نکالنا ٹرمپ پرشاسن کا سب سے برا فیصلہ تھا۔ بھارت پرشاست کشمیر میں مسلمانوں کے دشکوں پرانے گھروں کو گرایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں 2,20,00,000 سے زیادہ لوگ بھوکمری کا شکار ہیں۔ اب آپ وستار سے وشو سماچار سنیے۔ ایران کے ودیش منتری نے اپنے چینی سمکش سے بیجنگ میں ملاقات کی ہے۔ ہمارے سنواداتا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے بیجنگ میں اپنے چینی سمکش وانگ یی سے ملاقات کی اور راجنیتک، آرتھک اور چھیتریہ مدوں پر وچار ومرش کیا۔ امیر عبداللہیان اپنے چینی سمکش کے نمنترن پر ایک ششٹ منڈل کے ساتھ بیجنگ پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے شکروار کو وانگ یی کے علاوہ کئی ورشٹھ چینی ادھیکاریوں سے ملاقاتیں کی۔ دونوں دیشوں کے ودیش منتریوں نے اپنی اس ملاقات میں دیپکشی سہیوگ بڑھانے پر بل دیا اور امریکہ کے ایک طرفہ پرتیبندوں کی ترنت سماپتی کی مانگ کی۔ امریکہ کے ودیش منتری اینٹونی بلنکن نے 2015 میں ہوئے پرمانو سمجھوتے سے امریکہ کو باہر نکالنے کے لیے ٹرمپ پرشاسن کی کڑی آلوچنا کی ہے۔ بلنکن نے این پی آر ریڈیو کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ ایران کے ساتھ ہوئے پرمانو سمجھوتے سے باہر نکلنا ودیش نیتی سے سمبندھت ٹرمپ پرشاسن کے سب سے برے فیصلوں میں سے ایک تھا۔ غور طلب ہے کہ ایک لمبی بات چیت کے بعد 2015 میں ایران اور وشو کی 6 بڑی شکتیوں امریکہ، روس، برٹین، فرانس، چین اور جرمنی نے پرمانو سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے، لیکن 2018 میں امریکہ کے پورو راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے اتہاس کا سب سے برا سمجھوتا بتاتے ہوئے اس سے نکلنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ایران پر کڑے پرتیبندھ لگا دیے۔ تہران نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے پرمانو سمجھوتے کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل میں کمی کر دی اور یورینیم سموردھن کا گریڈ بڑھا دیا۔ अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान परमाणु समझौते में अमरीका की वापसी का वादा किया था, वाशिंगटन के अनुरोध पर ही वियना में परमाणु समझौते की बहाली के लिए वार्ता जारी है। अमरीकी विदेश मंत्री ने ट्रंप के फैसले को अमरीका की विदेश नीति के इतिहास में सबसे बुरे फैसलों में से एक बताया है। उनका दावा है कि इस फैसले के कारण आज हमें कई चुनौतियों का सामना है और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को खतरनाक हद तक आगे बढ़ा रहा है। जम्मू शहर के मुस्लिम जनजाति बाहुल्य इलाके में जम्मू कश्मीर का प्रशासन बेदखली अभियान चला रहा है। इससे कई लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें 2 माह के ऐसे बच्चे तक शामिल हैं जिनका अब तक नाम तक भी नहीं रखा गया है। 11 जनवरी मंगलवार को जम्मू विकास प्राधिकरण द्वारा दशकों से इलाके में रह रहे गुर्जर बकरवाल जनजाति के कई सदस्यों के घर तोड़ दिए गए। प्रशासन का दावा है कि वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चला रहा है। उसकी इस कार्रवाई केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में विरोध भड़क गया है। जम्मू कश्मीर में भी इस कार्रवाई की व्यापक आलोचना हुई और इसके खिलाफ गुस्सा देखा गया। जेडीए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इलाके में अचानक धावा बोल दिया और घरों को तोड़ दिया है। एनडीटीवी के लखनऊ में संवाददाता और भारत के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का शुक्रवार की सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया है। पत्रकारिता में कमाल खान बेहतरीन और अदबी जबान के लिए अपनी एक खास पहचान रखते थे और उन्हें रामनाथ कोयनका से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्हें समाज को अपने अनूठे ढंग से समझने समझाने वाले और विशिष्ट और विश्वसनीय आवाजों में से एक पत्रकार माना जाता था। उनके निधन पर कई विशिष्ट हस्तियों और राजनेताओं ने दुख जताया है। 61 साल के कमाल खान के परिवार में उनकी पत्नी रुचि और बेटा अमन है। लगभग 30 वर्षों के अनुभव के साथ कमाल खान पिछले काफी समय से लखनऊ में रहते हुए एनडीटीवी के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाल ही में अयोध्या जमीन विवाद से लेकर उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी उनकी तमाम खबरें चर्चा का विषय बनी थी। अब से कुछ घंटे पहले कमाल खान की एक वीडियो रिपोर्ट एनडीटीवी पर प्रकाशित हुई थी, जिसमें वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे के राजनीतिक मायने बता रहे थे। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और 2,20,00,000 से ज्यादा लोगों के सिर पर भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। विश्व समुदाय को तालिबान शासन में मानवाधिकारों, महिला अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की स्थिति पर गहरी चिंता है। यही वजह है कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान शासन को मान्यता प्रदान नहीं की है। इस स्थिति ने इस युद्धग्रस्त देश को इतिहास के बदतरीन आर्थिक संकट की कगार पर ला खड़ा किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान न केवल मानवीय संकट से जूझ रहा है बल्कि बदलाव के दौर से भी गुजर रहा है और इसका सीधा असर यहां की आधी आबादी पर पड़ रहा है। तालिबान ने महिलाओं को अर्थव्यवस्था और शिक्षा से लगभग पूरी तरह से निकाल बाहर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की मुख्य कार्यकारी मैरी एलेन मैग्रोसी का कहना है कि अफगानिस्तान को इस साल देश की न्यूनतम खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए $4.4 अरब की जरूरत है। यूनिसेफ का कहना है कि अफगानिस्तान में लगभग 1,40,00,000 बच्चे भूखमरी का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 50,00,000 बच्चों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही पश्चिमी देशों ने उसे दी जा रही आर्थिक मदद रोक दी। यह यहां के लिए लाइफलाइन की तरह थी। अर्थव्यवस्था की स्थिति तालिबान के लिए भी चिंता का सबब बन गई है, लेकिन उनके सामने एक और बड़ी चुनौती संगठन में मतभेदों का उभरना है। इसराइल की जेल में कैद सैकड़ों मरीज बहुत ही जानलेवा बीमारी में ग्रस्त हैं। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीन के बंदियों के मामलों की कमेटी के प्रमुख का कहना है कि इसराइल की जेल में 600 से अधिक कैदी हैं, जिनमें से دسیوں مریض کینسر جیسے خطرناک روگ میں گرست ہیں. عبدالناصر فروانہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جیل میں قید درجنوں فلسطینی قیدی دل کی بیماری، کینسر اور کڈنی کی بیماریوں جیسی خطرناک بیماریوں میں گرست ہیں، جبکہ کچھ اپنگ ہو چکے ہیں اور بنا کسی مدد کے شوچالے بھی نہیں جا سکتے. اویدھ ادھیکرت فلسطین میں چار ایرانی جاسوسوں کی گتیویدھیوں کے بارے میں اسرائیل کی آنترک خفیہ ایجنسی کے پچھلے دنوں کے دعوے کے بعد زائنی شاسن کا کہنا ہے کہ وہ یہ خبر سن کر حیران رہ گئے. فارسی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار اسرائیل کے ورشٹھ سرکشا ادھیکاریوں نے بیان دیا ہے کہ اویدھ فلسطین میں کچھ ایرانی جاسوسوں کی ورشوں تک گتیویدھیوں کی سوچنا سے وہ حیران ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ گروپ کیسے بنا. اسرائیل کی خفیہ ایجنسی شاباک نے پچھلے دن اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ اویدھ فلسطین میں چار جاسوس مہیلائیں اور ایک پروش کو ایران کے لیے جاسوسی کے شک میں گرفتار کیا گیا ہے. ایک مانوادھیکار سنستھا کا کہنا ہے کہ پچھلے سال سعودی عرب میں سزائے موت کے معاملے میں بہت زیادہ وردھی ہوئی ہے اور انتراشٹری سمودائے کو سعودی سرکار سے جواب طلب کرنا چاہیے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مانوادھیکار کی سعودی یوروپیہ سنستھا اس ہارڈ نے اپنی رپورٹ میں سعودی عرب میں سزائے موت میں آنے والی تیزی پر پرکاش ڈالا ہے اور لکھا ہے کہ سعودی عرب میں پچھلے ورشوں کی تلنا میں سزائے موت میں 148% کی وردھی ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے.
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
شوتو راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے. عراق میں لوک تانترک سسٹم ہے، وہاں پردھان منتری مکھ ہوتا ہے. وہاں کے پردھان منتری کو شیعہ ہونا چاہیے اور اس کا چین شیعہ سانسد کرتے ہیں. اس کا کارکال 4 سال کا ہوتا ہے. اتر کوریا کے سنچار مادھیموں نے اعلان کیا ہے کہ کم جونگ اون نے پچھلے 2 سالوں کے دوران پہلی بار نکٹ سے سپر سونک میزائل کے پریکشن کے لیے آیوجت کارکرم میں بھاگ لیا اور اس میزائل کا پریکشن نکٹ سے دیکھا. اس کارکرم میں انہوں نے دیش کی رکشا شکتی میں اور وردھی کی جانے پر بل دیا. بھارت میں سوریہ نمسکار کرنے کا جو آدیش آیا ہے اسے لے کر بھارت کے وبھن حلقوں میں ویرودھ جتایا جا رہا ہے. بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دھارمک معاملوں میں ہستکشیپ ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. عراق میں لوک تانترک سسٹم ہے، وہاں پردھان منتری مکھ ہوتا ہے. وہاں کے پردھان منتری کو شیعہ ہونا چاہیے اور اس کا چین شیعہ سانسد کرتے ہیں. ایک رپورٹ پیش کریں ساتھ ہی سید میسم عباس.
عراق میں لوک تانترک سسٹم ہے، وہاں پردھان منتری مکھ ہوتا ہے. وہاں کے پردھان منتری کو شیعہ ہونا چاہیے اور اس کا چین سانسد کرتے ہیں. اس کا کاریکال 4 سال تک کا ہوتا ہے. پردھان منتری کے چین کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 2/3 سانسدوں کا سمرتھن اسے حاصل ہو، جبکہ عراقی راشٹرپتی کو کرد ہونا چاہیے اور اس کا چین بھی سانسد کرتے ہیں. عراق میں 5ویں بار 329 سانسدوں کے چین کے لیے سنسد کا چناؤ ایسی استھتی میں ہوا جب چناؤ کے صحیح اور پاردرشی ہونے کے بارے میں بہت سوال اٹھ رہے ہیں. جب عراق میں الیکٹرانک مشین سے ووٹنگ کرائی گئی تو چناؤ میں دھاندلی اور گھپلے کا راستہ پرشست ہو گیا. इराक में चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार मुख्तदा सदर के नेतृत्व में सदर धड़े को 73 सीटें, मोहम्मद अलहबूसी के नेतृत्व में तगद्दम पार्टी को 37 सीटें, इराक के पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मालिकी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 33 सीटें मिली और वो तीसरे स्थान पर है। इसी प्रकार मसूद बारेजानी की अध्यक्षता में कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी को 31 सीटें मिली और वो चौथे स्थान पर है, जबकि फतह और मेहन गठन को 17-17 सीटें मिली हैं। विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने चुनाव के नतीजों पर आपत्ति जताई और उन्होंने चुनाव आयोग का आह्वान किया है कि वो फिर से मतगणना कराए जाने का आदेश दे। एक इराकी नेता का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि चुनाव अच्छे वातावरण में होंगे और उसमें कोई धांधली व घपले नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी फिर से मतगणना कराए जाने की मांग की है, साथ ही इन पार्टियों के नेताओं ने हाथ से मतगणना कराए जाने का आह्वान किया है। बहरहाल इराकी गुटों और पार्टियों ने चुनाव के परिणामों को स्वीकार कर लिया है और इराकी संसद की कार्रवाई भी आरंभ हो गई है, लेकिन पहले ही दिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम को लेकर विवाद हो गया और संसद की पहले ही बैठक किसी परिणाम के बिना समाप्त हो गई। और अब देखना है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम के चयन को लेकर इराकी संसद क्या निर्णय लेते हैं।
उत्तर कोरिया के संचार माध्यमों ने ऐलान किया है कि किम जोंग उन ने पिछले 2 सालों के दौरान पहली बार निकट से सुपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और इस मिसाइल का परीक्षण निकट से देखा। इस कार्यक्रम में उन्होंने देश की रक्षा शक्ति में और वृद्धि किए जाने पर बल दिया। समीक्षा पेश करें साथ ही अख्तर अब्बास।
उत्तरी कोरिया के नेता ने देश की सैन्य क्षमता में वृद्धि पर बल दिया है। उत्तरी कोरिया के संचार माध्यमों ने ऐलान किया है कि किम जोंग उन ने पिछले 2 सालों के दौरान पहली बार निकट से सुपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और मिसाइल का परीक्षण निकट से देखा। इस कार्यक्रम में उन्होंने देश की रक्षा शक्ति में और वृद्धि किए जाने पर बल दिया है। मार्च 2020 के बाद से यह पहली बार था कि जब आधिकारिक तौर पर किम जोंग उन ने एक मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उत्तरी कोरिया ने अपने नवीनतम सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया और उसने 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपने लक्ष्य को सटीक रूप से भेद दिया। सवाल ये पैदा होता है कि उत्तरी कोरिया हर कुछ समय पर मिसाइलों का परीक्षण क्यों करता है। उसके जवाब में जानकार हलकों का कहना है कि अमेरिका ने कोरिया प्रायद्वीप में जो गतिविधियां आरंभ कर रखी हैं उसका ये स्वाभाविक परिणाम और प्रतिक्रिया है। अमेरिका अपनी वर्चस्ववादी मांगों को मनवाने के लिए उत्तरी कोरिया को झुकाना चाहता है, परंतु उत्तर कोरिया न केवल उसकी वर्चस्ववादी मांगों को स्वीकार नहीं कर रहा है बल्कि उसके मुकाबले में डट गया है। और उत्तरी कोरिया का कहना है कि जब तक प्योंगयांग के संबंध में वॉशिंगटन की शत्रुतापूर्ण नीतियां परिवर्तित नहीं होंगी तब तक उत्तरी कोरिया अपनी रक्षा शक्ति मजबूत करता रहेगा। अमेरिका ने कई साल पहले दक्षिणी कोरिया में थर्ड प्रक्षेपास्त्रिक रक्षा प्रणाली स्थापित कर दी है। अमेरिका कई बार दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर चुका है और इसी प्रकार हालिया वर्षों में अमेरिकी अधिकारी कई बार उत्तरी कोरिया को सैनिक धमकी भी दे चुके हैं। इन बातों के दृष्टिगत उत्तरी कोरिया अपनी सैन्य क्षमता में मजबूती को जरूरी समझता है। उत्तरी कोरिया के नेता के हालिया उस बयान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है जिसमें उन्होंने प्योंगयांग की रक्षा शक्ति में वृद्धि पर बल दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कोरिया के नेता से बातचीत की मगर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसकी मुख्य और असल वजह अमेरिका का वर्चस्ववादी रवैया और दोहरा मापदंड है। एक तरफ वो ये राग अलापता है कि वो कोरिया प्रायद्वीप के संकट का समाधान चाहता है और दूसरी ओर वो दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है और इस देश में थर्ड प्रक्षेपास्त्रिक रक्षा प्रणाली तैनात करता है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ताकाल में अमेरिका और उत्तरी कोरिया के संबंध बहुत तनावग्रस्त थे। इन तनावों को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन ने जून 2018 में पहली बार सिंगापुर की मेजबानी में एक दूसरे से मुलाकात की जिसमें यह तय पाया कि उत्तरी कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों के बंद होने के बदले में अमरीका उत्तरी कोरिया के खिलाफ समस्त प्रतिबंधों को समाप्त कर देगा। इसके बाद उत्तरी कोरिया ने अपने परमाणु और गैर परमाणु मिसाइलों का परीक्षण बंद कर दिया था, परंतु अमरीका की ओर से प्योंगयांग के खिलाफ लागू प्रतिबंध न केवल समाप्त नहीं हुए बल्कि कोरिया प्रायद्वीप में अमरीका ने अपनी उत्तेजक कार्रवाइयों में और वृद्धि कर दी। इसी प्रकार ट्रंप और किम जोंग उन ने दूसरी मुलाकात फरवरी 2019 में वियतनाम की राजधानी हनोई में की और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। दो बार की मुलाकातों के बाद जब उत्तरी कोरिया ने व्यवहार में देख लिया कि अमेरिका ने अपने वचनों पर अमल नहीं किया तो उसने दोबारा अपने मिसाइलों का परीक्षण आरंभ कर दिया और हालिया मिसाइल परीक्षण को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
भारत में सूर्य नमस्कार करने का जो आदेश आया है उसे लेकर भारत के विभिन्न हलकों में विरोध जताया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों के गठबंधन गुपकार अलायंस ने कहा है कि नई दिल्ली की मौजूदा रजीम भाजपा मैनिफेस्टो पर अमल पैरा होकर जम्मू कश्मीर के लिए आदेश जारी कर रही है। गुपकार अलायंस के एक अहम नेता महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी है, ने कहा है कि जो एक नया आदेश सामने आया है जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो सवेरे सूर्य नमस्कार करें, इससे ये बात सिद्ध होती है कि वो अपना मैनिफेस्टो चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग इस्लाम के मानने वाले हैं और वो सूर्य नमस्कार कर ही नहीं सकते हैं, परंतु आदेश जारी करके लोगों को इसके लिए मजबूर करना इस बात के संकेत है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है।
देखिए, जहां तक इस ऑर्डर का ताल्लुक है जो आज मकर संक्रांति के लिए निकाला गया था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जहां कहा गया है कि मैं मानता हूं ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस होगी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, मीन्स हिंदुइज्म में ये प्रैक्टिस होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी मुसलमानों की है और मुसलमानों में ये प्रैक्टिस नहीं है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर काम करना चाहिए, उनको ये नहीं, उनको क्लैरिजी नहीं बनना चाहिए। वो एक खास मज़हब की क्लैरिजी अगर बनेगी तो फिर तो यहाँ जो एक्सट्रीमिज्म फैलने का वजह ही वजह है। एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेकुलर मुल्क है, हर एक को अपने अपना मज़हब अपनाने और निभाने की पूरी छूट है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है और इनसे इन हरकत से उनको कुछ नहीं हासिल होगा। वो करे जिस मज़हब के लोगों के मज़हब में ये है वो करे, और जिन मज़हब के लोगों के मज़हब में ये नहीं है वो नहीं करेंगे। कोई मुझे कोई भी फ़ायदा इसका बताए जी, सूरज और चाँद और कुछ हमें क्या है उसके साथ। एज अल्ताफ बुखारी मैं कहता हूँ, अगर अल्ताफ बुखारी को कहेगा सूर्य नमस्कार करो, मैं नहीं करूँगा।
जम्मू कश्मीर में अगरचे हेल्थ एडवाइजरी पहले ही जारी की गई है, परंतु अब उन्होंने लोगों पर बल दिया है कि वो उस पर अमल करें। श्रीनगर के डीएम ने कहा है कि श्रीनगर में भी अब स्थिति हद से बाहर हो रही है। उन्होंने कहा कि जहां 30 के निकट लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वहां पर अब 150-200 और इसमें भी और ज्यादा उछाल दिखने को मिल रहा है।
अगर आप देखें पिछले 5-7 दिन से केसेस में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक है। पहले जहां हमारे केसेस 30-40 में आ रहे थे, अब वही हमारा अगर देखें हम केसेस 130 में और कल तो 150 क्रॉस हो गया। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उसके साथ अगला सवाल आपका कुदरती तौर पर ये होगा कि हमें करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, हमारी तैयारियाँ क्या हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि तैयारियों के सिलसिले में जिस तरीके से हमने सेकेंड वेव में काफ़ी सब ने मिलकर पूरी टीम ने और आवाम के तावन के साथ सेकंड वेव में हमने जो ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था उससे बड़ा स्मूथली हमने उसको टैकल किया और ऑक्सीजन बेड्स सफिशिएंट नंबर में अवेलेबल।
सिप्ति मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर पर, उससे पहले आप सुनिए अपना मन पसंद कार्यक्रम पात्र संसार।
पत्र संसार।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी
और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
आज भी श्रोताओं के कमेंट्स, ईमेल्स और दूसरी कुछ चीजें कार्यक्रम पत्र संसार की शोभा बढ़ाएंगे। देखते ये हैं कि दीदी आमतौर पर ईमेल से शुरू करती हैं, तो आज किसका ईमेल शामिल कर रही है
जी? सबसे पहले भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी को पहले नए साल की मुबारकबाद दे दें। हालांकि एक हफ्ता गुजर गया है, फिर भी हमारे पास इतने ईमेल आए हैं, सभी वो नए साल पर ही है। तो डॉक्टर हेमंत कुमार ने गोराडे भागलपुर बिहार से हमें हैप्पी न्यू ईयर कहा है 2022 का। और फिर जमशेदपुर झारखंड से एसपी शर्मा लिखते हैं कि रेडियो तेहरान हिंदी सेवा टीम के सदस्यों, श्रोताओं और दुनिया भर के हित धारकों के सभी मित्रों और परिवारों को एक बहुत खुश, स्वस्थ और समृद्ध नववर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, विशेष रूप से विश्व शांतिपूर्ण और युद्ध, भूख और कोरोना वायरस से मुक्त हो, सारा विश्व सुखी और सुरक्षित हो।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो साल गुजर गया 2021 और उससे पहले वाला साल भी, इस पर कोरोना की छाया रही। कोरोना ने सारी दुनिया को, पूरे संसार को परेशान करके रख दिया। पूरे विश्व की गतिविधियां हर क्षेत्र में बहुत बुरी तरह प्रभावित रहीं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे रहे कि जो ऐसा कहना चाहिए कि एक तरह से ध्वस्त होकर रह गए। तो अब नए साल में आशा की जाती है कि दुनिया को इस तरह के संकटों से, इस तरह की परेशानियों से, महामारियों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन दीदी, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है और एक जाहिर है महामारी है, लेकिन बहुत सारे संकट और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो इंसान की अपनी पैदा की हुई हैं। कोरोना के बारे में तो एक अलग डिबेट है कि इंसान ने बनाया या खुद से आया, एक अलग चीज़। लेकिन कुछ चीज़ें जो निश्चित रूप से मालूम है कि इंसान के हाथ की है, कम से कम वहाँ पर कोशिश की जा सकती है कि ये समस्याएं ख़त्म हों और इस तरह के तनाव और विवाद ना रहे। नए साल में हम इसकी कामना करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के संदर्भ में WHO का जो एक कुछ दिन पहले का बयान है, उसमें ये बात कही गई है कि आशा है कि नए साल में इसकी संभावना है कि ये खत्म हो जाएगा।
किसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल लिखते हैं कि 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं, उम्मीद है कि नववर्ष में रेडियो तेहरान श्रोताओं के लिए कोई नई योजना सामने लेकर आएगा। बहरहाल हमने हर बार की तरह दिनांक 17 दिसंबर का पत्र संसार का अंक भी पूरे मनयोग से सुना, जिसमें श्रोता मित्रों की प्रतिक्रियाओं के बीच सांस्कृतिक खबर में ईरानी उत्तरी शहर तैलिश एवं पोलो खेल के इतिहास पर अच्छी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बहन शहनाज हसन की बातचीत का दूसरा भाग भी सुना, जिसे सुनकर चित्त प्रसन्न हो गया। धन्यवाद एक अच्छी प्रस्तुति के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस ईमेल के लिए और आपके इन विचारों के लिए। हमारे लिए भी ये खुशी की बात है कि आपको कार्यक्रम पसंद आते हैं, और महत्वपूर्ण है कि आप ओडिशा से हमें अपने विचार भेजते हैं, अपने सुझाव भेजते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और साथ ही साथ आभार। तो अब बारी है संस्कृति से जुड़ी खबर की, तो देखते हैं कि दीदी ने इस सप्ताह के लिए क्या खबर चुनी है।
जी, ईरान के दक्षिण में आबादान शहर में स्थित रंगूनिया मस्जिद पूरी तरह एक अलग वास्तुकला है और ईरान की ये सबसे अमूल्य मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद शियाओं और सुन्नियों के बीच दोस्ती का प्रतीक है। प्रत्येक ऐतिहासिक युग में ईरान में मस्जिदों का निर्माण इन चार स्थापत्य शैलियों में से एक में किया गया था, खुरासानी, राजी, आजेरी और इस्फानी। हालांकि ईरानी मस्जिदों में हर युग के दौरान उनके रूपों में समानताएं पाई जाती हैं। रंगूनिया मस्जिद अन्य मस्जिदों से आश्चर्यजनक रूप से भिन्न है। मस्जिद का निर्माण 1912 में भारतीय उपमहाद्वीप में लोकप्रिय वास्तुकला के आधार पर बनाया गया था। मस्जिद 1920 में बनकर तैयार हुई थी। मस्जिद का निर्माण भारतीय और बांग्लादेशी कर्मियों और श्रमिकों के लिए किया गया था, जो दक्षिणी ईरान में रिफाइनरियों में काम करने के लिए ईरान आए थे। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को हरे रंग से रंगा गया है और बाहरी हिस्से को सीमेंट और उभरा हुआ सजावट से सजाया गया है। मस्जिद की वेदी संरचना के खूबसूरत हिस्सों में से एक है और इसे अरबी और ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है। नवीनीकरण होने के पश्चात रंगूनिया मस्जिद को 2009 में एक हस्तलिखित और ऐतिहासिक स्मारक संग्रहालय के रूप में फिर से खोल दिया गया। मस्जिद के हिस्से में काजार और पहलवी युग की पुरानी किताबें और पंडुलिपियां प्रदर्शित की गई हैं। इनमें वित्तीय और व्यावसायिक पत्रों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के वचन पत्र और विनिमय यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज शामिल हैं।
तो दीदी ने बहुत अच्छी खबर सुनाई संस्कृति से जुड़ी रंगूनिया मस्जिद के बारे में। अब बारी है श्रोताओं कमेंट्स की, तो देखते हैं कि दीदी ने कौन से कमेंट्स चुने हैं।
जी, केवल ईरान तक सीमित नहीं है शहीद सुलेमानी के चाहने वाले। इस पर परी जाफरी लिखती हैं, जनरल सुलेमानी एक आदर्श और विचारों के संपूर्ण स्कूल थे, जहां उनकी विरासत हर स्वतंत्रता चाहने वाले इंसान के डीएनए के साथ जुड़ गया है। इसके अलावा सार्वजनिक और निजी स्कूलों में उनका विषय पढ़ाया जाना चाहिए। वो किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिखाने आए थे जिसे आप एक आदर्श मुसलमान कह सकते हैं।
बहुत मूल्यवान विचार व्यक्त किए हैं परी जाफरी ने, और वास्तव में ऐसा ही है। शहीद कासिम सुलेमानी एक व्यक्ति के बजाय एक पाठशाला, एक विचारधारा और एक मत थे, जो कि अनेक शिक्षाओं, खसूसियतों, विशेषताओं और तरह तरह की सीख का एक संग्रह है। उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को अगर देखा जाए तो उन सब में कोई ना कोई सीख है, कोई ना कोई आदर्श है और कोई ना कोई बात सिखाई गई है। तो ये बात सही है। और इस तरह से चूंकि उनका जो ये व्यक्तित्व है और उसके जो अलग अलग पहलू हैं और खूबसूरती का जो पहलू है, उनके स्वभाव की खूबसूरती का पहलू, साथ ही साथ उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो सूझबूझ है, उनकी जो दूरदर्शिता है, इस तरह की बहुत सारी खूबियाँ हैं जो उनके व्यक्तित्व में भरी हुई हैं। कुछ सामने आई हैं और कुछ शायद आने वाले दिनों में पता चलें, जब उन घटनाओं के बारे में पता चले जिनमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
ईरान के क्रूज मिसाइलों ने शक्ति के संतुलन को परिवर्तित कर दिया, द न्यू यॉर्कर। इस पर शहनशाह लिखते हैं कि अमेरिका पहले ही 80 के दशक में सद्दाम के माध्यम से ईरान पर हमला कर चुका है और अमेरिका 80 के दशक में ईरान से अपना आक्रामक युद्ध हार गया। और 80 के दशक में ईरान की सेना बहुत कमज़ोर थी, लेकिन आज बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसलिए अगर अमेरिका इतना मूर्ख है कि ईरान पर फिर से हमला कर सकता है तो वो इस बार अपनी कब्र और इसराइल की कब्र खोदेगा।
इस्लामिक गणतंत्र ईरान की ताकत की जहां तक बात कही है वो बिल्कुल सही है। ईरान ने रक्षा क्षेत्र में साथ ही साथ दूसरे क्षेत्रों में बहुत व्यापक और उल्लेखनीय प्रगति की है। इसका एहसास इस्लामी गणतंत्र ईरान के दोस्तों को भी है, वो इस पे खुश हैं, और दुश्मनों को भी अच्छी तरह से पता है, इसीलिए वो चिंतित रहते हैं, हताश रहते हैं।
भैया, अब हमारे एक अच्छे श्रोता के विचार जानने की बारी आई है
जी।
तो आज हम शहीद सुलेमानी के बारे में हमारे एक अच्छे श्रोता ने पंजाब पाकिस्तान से अपने विचार
भेजे हैं। जी बिल्कुल, शहीद सुलेमानी की बरसी चुके दीदी अभी गुजरी है और इस संदर्भ में हमारे कई कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इसके इन कार्यक्रमों के बारे में फीडबैक भी हमें मिलती रही, बल्कि ये कह सकते हैं एक तरह से उसी फीडबैक की एक कड़ी ये भी है जो हमें पाकिस्तान से हमें ये विचार भेजे गए हैं। शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी के अवसर पर विशेष कार्यक्रम कई प्रसारित किए गए, तकरीबन 6-7 कार्यक्रम थे जिनमें उनके व्यक्तित्व के बारे में बात की गई। तो आइए देखते हैं कि हमारे श्रोता ने क्या
मलिक जलाल अब्बास, देखते हैं ये क्या कहते हैं।
जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक जलाल अब्बास है, मैं पंजाब चकवाल पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। शहीद कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, शहीद कासिम सुलेमानी की ज़ाती खसूसियात के हवाले से बात की जाए तो जैसा हमने पढ़ा, उनके बारे में सुना और जैसे बहरहाल वो नज़र आते हैं, उनकी शख्सियत, वो एक बहुत ही मोमिन, दीनदार, निडर, शुजा, बहादुर जनरल थे इस्लाम के, और मिल्लत इस्लामिया पर उनके बहुत बड़े एहसानात हैं जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। एक तो उनकी ज़ात का शख्सी पहलू था कि वो एक बहादुर, मोमिन, शुजा और नेक इंसान थे, मुजाहिद इंसान थे, बहादुर इंसान थे। और दूसरा उनकी ज़ात का जो दूसरा पहलू था, मैं ये समझता हूँ कि जनरल कासिम सुलेमानी न फकत मुसलमानों के मोहसिन हैं या एक ख़ास फ़िरके के सेक्ट के मोहसिन हैं, बल्कि वो बशरियत के मोहसिन हैं, वो इंसानियत के मोहसिन हैं। शहीद कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानियत की खिदमत की है। दहशतगर्दी ये पूरी इंसानियत का अलमिया है, दहशतगर्द पूरी इंसानियत का दुश्मन होता है, टेररिस्ट पूरी इंसानियत का जो है वो दुश्मन होता है। दाइश जैसे जो सफाक दरिंदे हैं जिनकी पुश्त पर एक पूरी इस्तेमारी ताकतें खड़ी हुई थीं, और इन दरिंदों के सामने मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम कोई भी उनके नज़दीक जो है वो इंसानियत का एहतराम नहीं था और ना है। आज भी ये जितने भी टेररिस्ट ग्रोह हैं दाइश की सूरत में, अलकायदा, तालिबान, इनके सामने, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि शहीद कासिम सुलेमानी जो थे रिजवानुल्लाह ताला अलैह, वो इंसानियत के जो हैं वो क्या कहते हैं कि मोहसिन थे, वो बशरियत के मोहसिन थे, और आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में, तारीख में ये चीज़ जो है वो दुनिया देखेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहीद कासिम सुलेमानी ने जो जिहाद किया, जो काम किया, वो पूरी इंसानियत की खिदमत थी, वो पूरी बशरियत की खिदमत थी। जिस जिस इलाकों में दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये टेररिज्म फैल रही थी, सीरिया, इराक, यमन या दूसरे जगहों पे, उन्होंने मुसलमानों को न फकत ये कि प्रोटेक्शन या उनका दिफा किया, डिफेंस किया, बल्कि वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स जो थे, यानी एक तरह से ये पूरी इंसानियत की खिदमत पे थी। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो शहीद इस्लाम हैं, उन्होंने बहुत बड़ी जो है वो खिदमत की है मुसलमानों की, इस्लाम की और बशरियत की।
तो दीदी, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अगली मुलाकात तक हम अनुमति लेना चाहेंगे। श्रोताओं, अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए।
खुदा हाफिज़।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। विज्ञान की डगर।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम विज्ञान की दुनिया में होने वाली प्रगति और रोमेटिक हार्ट डिजीज के विषय पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, इस्लामी विश्व विज्ञान प्रशस्ति पत्र डेटाबेस ISC की ओर से जारी आंकड़ों के आधार पर ईरान ने हालिया 20 वर्ष के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में औसतन 21.62% वार्षिक वैज्ञानिक प्रगति करके दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में जबरदस्त छलांग लगाई है और 38 पायदान आगे बढ़ा है। ISC की रिपोर्ट के आधार पर ईरान में विज्ञान की पैदावार की प्रक्रिया से जो वेब ऑफ साइंस WOS वेबसाइट से ली गई है, पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों में ईरान के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की ओर से पेश किए गए शोधपत्रों और दस्तावेजों की संख्या 1376 हिजरी शमसी में 983 से बढ़कर 1396 हिजरी शमसी के अंत तक 49,696 तक पहुंच गई है और इसमें तब से लेकर अब तक निरंतर प्रगति हो रही है, यानी 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। वेबसाइट के अधिकारियों का कहना है कि WOS में प्रकाशित होने वाले 79.1% दस्तावेज और डॉक्यूमेंट ईरानी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की ओर से लिखे गए हैं, जो शोध पत्रों की शक्ल में हैं। और इस विषय से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की वैज्ञानिक स्थिति क्या है और इस देश के वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान में किस स्तर पर हैं। नेचर इंडेक्स संस्था की जनवरी 2018 की रिपोर्ट के आधार पर इस्लामी गणतंत्र ईरान ने पिछले दशकों के दौरान दुनिया के अन्य देशों की तुलना में प्रतिवर्ष 22% विज्ञान, तकनीक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रगति की है और ये विकास और प्रगति दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले में अंजाम देकर दुनिया में ईरान ने पहला स्थान हासिल किया है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अन्य प्रगतियों और उपलब्धियों की बात करें तो NYW विश्वविद्यालय के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने इंसान के शरीर में एक नए अंग का पता लगाया है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि शरीर का ये अंग शॉक ऑब्जर्वर या आघात अवशोषक के रूप में काम करता है और संभावित रूप से ये शरीर का सबसे बड़ा अंग समझा जाता है। जैसा कि बताया गया है कि इंसान के बदन या शरीर में आपस में एक गुथी हुई और घनी बनावट पाई जाती है, जो वास्तव में जानकारियों और सूचनाओं के एक नेटवर्क के रूप में काम करता है और इसी को आघात अवशोषक या शॉक ऑब्जर्वर कहा जाता है। दोस्तों, अगर खोज की पुष्टि हो जाती है तो यह बदन के बारे में हमारी जानकारियों को बदल सकता है और शोधकर्ताओं के अनुसार अगर इंसान के शरीर में कैंसर का रोग पैदा हो रहा है या कैंसर की संभावना होती है तो ये तुरंत बदन को अलर्ट कर देता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसका सबूत यह है कि शरीर के कुछ अंगों की तुलना में दूसरे अंगों में कैंसर बहुत तेजी से फैलता है और पैदा होता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मनुष्य के जिस नए अंग का पता चला है उसका नाम इंटरस्टिशियम है। वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर में एक नए ऑर्गन की खोज की है जिसके बारे में अब तक किसी को जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे शरीर में जो परत है जिसे अब तक सघन और संयोजक टिश्यू समझा जाता है, वो दरअसल तरल पदार्थों से भरे कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें इंटरस्टिशियम नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर में एक नए ऑर्गन की खोज की है जिसके बारे में अब तक किसी को जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस नई खोज की मदद से मनुष्य के शरीर में कैंसर कैसे फैलता है इसे आसानी से समझा जा सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे शरीर में जो परत है जिसे अब तक संयोजक टिश्यू समझा जाता था या वे दरअसल तरल पदार्थों से भरे कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें इंटरस्टिशियम का नाम दिया गया है। ये कंपार्टमेंट्स हमारी स्किन के नीचे पाए जाने के साथ आंत, फेफड़े, रक्त नलिका और मांसपेशियों के नीचे भी परत के रूप में पाए जाते हैं और ये आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे मजबूत और लचीले प्रोटीन के जाल का सपोर्ट मिला होता है। इंसान के शरीर के बारे में किया गया ये नया विश्लेषण साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है और पहली बार इन रिक्त स्थानों को संयुक्त रूप से एक नए ऑर्गन के तौर पर माना गया है ताकि उनके कार्य करने के तरीके को समझा जा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि इंटरस्टिशियम पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया जबकि यह इंसान के शरीर के सबसे बड़े ऑर्गन्स में से एक है। वैज्ञानिकों की जिस टीम ने इस ऑर्गन की खोज की है उनका मानना है कि शरीर के ये कंपार्टमेंट्स या अंश शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं जो शरीर के टिश्यूज को डैमेज होने से बचाते हैं। माउंट स्नाई बेत के डॉक्टर डेविड कॉरलॉक और डॉक्टर पेट्रोस वेनियास जब एक मरीज के शरीर में कैंसर के संकेतों का पता लगाने के लिए पित्त वाहिनी बाइल डक्ट की जांच कर रहे थे तो उस दौरान उन्हें इंटरस्टिशियम के बारे में पता चला। उन्होंने देखा कि इस मरीज के शरीर में कैविटीज या छेद था जो पहले कभी इंसान के शरीर के गहन विश्लेषण के दौरान सामने नहीं आया। उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नील थेसी से इस बारे में बात की। पूरे शरीर में पाए जाने वाले तरल पदार्थों से भरे इन शॉक ऑब्जर्वर को अब तक सिर्फ साधारण परत वाले कनेक्टिव टिश्यू के रूप में जाना जाता था लेकिन हाल ही में हुई जांच के नतीजों के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना न सिर्फ पित्त वाहिनी बाइल डक्ट में पाई जाती है बल्कि शरीर के दूसरे और बेहद अहम ऑर्गन्स के आसपास भी होती है। इंसान के शरीर में इस नए ऑर्गन की खोज और उसे पूरी तरह से समझने के बाद वैज्ञानिकों को कैंसर के लिए नया टेस्ट विकसित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों अब हम आमवात रोगों या रोमेटिक हार्ट डिसीज के विषय पर चर्चा करेंगे। आमवात ज्वर रोमेटिक फीवर या रोमेटी हृदरोग एक ऐसी अवस्था है जिसमें हृदय के वॉल्व एक बीमारी की प्रक्रिया से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण गले के संक्रमण से शुरू होती है। यदि इसका इलाज नहीं किया जाए गले का ये संक्रमण रोमेटिक बुखार में बदल जाता है। बार बार के रोमेटिक बुखार से ही रोमेटिक हृदय रोग विकसित होता है। रोमेटिक बुखार एक सूजने वाली बीमारी है जो शरीर के खासकर हृदय जोड़ों मस्तिष्क या त्वचा को जोड़ने वाले ऊतकों को प्रभावित करती है। जब रोमेटिक बुखार हृदय को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करता है तो उस अवस्था को रोमेटिक हृदय रोग या रोमेटिक हार्ट डिसीज कहा जाता है। हर उम्र के लोग गंभीर रूप से रोमेटिक बुखार से पीड़ित तो हो सकते हैं लेकिन सामान्य तौर पर यह 5 से 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में होता है। हृदय का एक क्षतिग्रस्त वॉल्व या तो पूरी तरह बंद नहीं होता या पूरी तरह नहीं खुलता। पहली स्थिति को चिकित्सकीय भाषा में इंसफिशिएंसी और दूसरी स्थिति को स्टेनोसिस कहते हैं। पूरी तरह बंद होने वाले हृदय के वॉल्व में खून हृदय के उसी कक्ष में वापस चला जाता है जहां से उसे पंप किया जाता है। इसे रिंग ग्रिंगटेशन या लीकेज कहते हैं। हृदय की अगली धड़कन के साथ यह खून वॉल्व से पार होकर सामान्य रूप से बहने वाले खून में मिल जाता है। हृदय से गुजरने वाली खून की ये अतिरिक्त मात्रा हृदय की मांसपेशियों पर अतिरिक्त बोझ डालती है। जब हृदय का वॉल्व पूरी तरह नहीं खुलता तब हृदय को खून की सामान्य से अधिक मात्रा पंप करनी पड़ती है ताकि संकरे रास्ते में पर्याप्त खून शरीर में जाए। सामान्य तौर पर इसका कोई लक्षण तब तक नहीं दिखाई देता जब तक कि रास्ता अत्यंत संकरा न हो जाए। छाती के एक्सरे और ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दो ऐसी सामान्य जांच हैं जिनसे पता चलता है कि हृदय प्रभावित हुआ है या नहीं। चिकित्सक इसका उपचार मरीज के सामान्य स्वास्थ्य, चिकित्सकीय इतिहास और बीमारी की गंभीरता के आधार पर तय करते हैं। चूंकि रोमेटिक बुखार हृदय रोग का कारण है इसीलिए इसका सर्वोत्तम उपचार रोमेटिक बुखार के बार बार होने से रोकता है। रोमेटिक हृदय रोग को रोकने का सर्वश्रेष्ठ उपाय रोमेटिक बुखार को रोकना है। गले के संक्रमण के तत्काल और समुचित उपचार से इस रोग को रोका जा सकता है। यदि रोमेटिक बुखार हो तो लगातार एंटीबायोटिक उपचार से इसके दोबारा आक्रमण को रोका जा सकता है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अख्तर रिज़वी को इजाजत दीजिए।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।